जय जय कृष्ण जय श्रिय जय चंद्र जय गौर भक्त जय जय कृष्ण जय नित्यानंद श्रिय जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 और श्लोक संख्या 70 और 71 70 का तात्पर्य नहीं है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ 71वां एक साथ पढ़ेंगे। तयोरप्युभयोर मध्ये राधिका सर्वसाधिका महाभावो स्वरूपेयं गुणैरतिवरीयसि। कृष्णाचार्य कह रहे हैं इन दो गोपियों में कौन सी दो है, दो गोपियां सर्व प्रमुख हैं, वो कौन सी हैं दो, राधा रानी और चंद्रावली। राधा रानी चंद्रावली उन दोनों में श्रीमती राधा रानी सभी प्रकार से श्रेष्ठ हैं, वे साक्षात महाभाव हैं और सब गुणों में सर्वोपरि हैं। तात्पर्य में प्रभा लेते हैं ये श्लोक रूप गोस्वामी चरित उज्ज्वल नीलमणि का दूसरा श्लोक है। अब प्रयास संख्या 71 बोलिए। कृष्णा प्रेम भाव विचार चित्तेन्द्रिय काय कृष्ण निज शक्ति राधा सीधार सहाय कृष्णा प्रेम भाव विचार चित्तेन्द्रिय काय जय शक्ति राधा श्री धारे सहाय कृष्णा पे मैं भागत जार सत्येन्द्रिय काय निज कृष्ण निज शक्ति राधा श्री धारे सहाय। धन्यवाद बोलिए। उनका मन इंद्रियां तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं, वे कृष्ण की निजी शक्ति हैं और वे उनकी लीलाओं में सहायता करती हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा कि प्रभुपाद जी श्रीमती राधा रानी कृष्ण जैसी आध्यात्मिक है, उन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए, वे निश्चित रूप से उन बद्ध जीवों के सदृश नहीं है जिनके भौतिक शरीर स्थूल तथा सूक्ष्म होकर भौतिक इंद्रियों से आवृत हैं। वे पूर्ण आध्यात्मिक हैं और उनका शरीर तथा मन दोनों एक ही आध्यात्मिक विग्रह हैं। जब उनका शरीर आध्यात्मिक है तो उनकी इंद्रियां भी आध्यात्मिक हैं। इस तरह उनका शरीर मन तथा इंद्रियां कृष्ण प्रेम से पूर्णतया समर्पित हैं, वे साक्षात हलादनी शक्ति हैं, अतः वे कृष्ण की एकमात्र भोग्या हैं। श्री कृष्ण किसी ऐसी वस्तु का भोग नहीं कर सकते जो आंतरिक रूप से उनसे भिन्न हो, अतः राधा तथा श्री कृष्ण अभिन्न हैं। श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति के संदिनी अंश से श्री कृष्ण का सर्व आकर्षक स्वरूप प्रकट होता है और वहीं अंतरंगा शक्ति लादिनी रूप में श्रीमती राधा रानी को प्रस्तुत करती है जो सर्व आकर्षक को भी आकर्षित करती है। तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं, जो सर्व आकर्षक को भी आकर्षित करती है। सर्व आकर्षक कौन है, भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षक है, उनको भी आकर्षित करती है। तो इस तरह से राधा रानी का क्या नाम हो सकता है, सर्वाकर्षक कर्षणी, सर्वाकर्षक कृष्णी श्री कृष्ण की सिद्ध लीलाओं में श्रीमती राधा रानी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य की एक विशेषता देखी जाती है, वो क्या है कि प्रभुपाद जी हमेशा मूल सिद्धांत पर आ जाते हैं। मूल सिद्धांत क्या है कि भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, राधा रानी का शरीर भौतिक नहीं है, पूर्ण आध्यात्मिक है। राधा कृष्ण के जो संबंध है उस भौतिक संसार के स्त्री पुरुष के संबंध जैसे नहीं है। आप जहाँ देखे वहीं पर प्रभुपाद जी को यही कहते पाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी जगत गुरु हैं, तो प्रभुपाद जी की जो विशेषता है वो ये है कि प्रभुपाद जी जगत गुरु हैं। और सामान्य स्त्री और पुरुषों में जो आकर्षण है ना, तो उस तरह से राधा कृष्ण के संबंध में लोगों की आदत है कल्पना करने की। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार इसी बात को समझाते हैं। देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं तात्पर्य में, श्री कृष्ण किसी ऐसी वस्तु का भोग नहीं कर सकते जो आंतरिक रूप से उनसे भिन्न हो। राधा रानी अलग नहीं है। जिस भौतिक संसार में कोई पुरुष है वो स्त्री को भोगना चाहता है, लेकिन उस स्त्री का जो विचार है, स्वभाव है, वो अलग है। और जो पुरुष है वो नहीं जानता किस प्रकार से वो उसको प्रसन्न नहीं कर पाता है। और इस तरह से फिर एक दूसरे में संबंध विच्छेद होते हैं, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, वो एक दूसरे को अपनी बात बता नहीं पाते हैं। और इस तरह से फिर संबंध में चकुता आती है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि राधा रानी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आंतरिक रूप में उनसे भिन्न हो। अतएव राधा और श्री कृष्ण अभिन्न है। तो इसलिए प्रभुपाद जी चेतावनी है कि किसी प्रकार से उनकी नकल नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से उनकी नकल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण जो है स्वयं ही राधा रानी के रूप में अपना विस्तार करते हैं। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, अंतरंग शक्ति श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति के संदिग्ध अंश से श्री कृष्ण का सर्व आकर्षक स्वरूप प्रकट होता है। तो राधा रानी क्या है, श्री कृष्ण का ही सर्व आकर्षक स्वरूप है, उनकी संदिग्ध शक्ति के अंश से जो प्रकट होता है। वही अंतरंग शक्ति लादिनी शक्ति के रूप में श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रस्तुत होती है। और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य का अंतिम जो वाक्य है वो क्या है, श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में श्रीमती राधा रानी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। कृष्ण की जितनी लीलाएं सब दिव्य हैं, कृष्ण की लीलाओं में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भौतिक हो। जन्म समित में दिव्य हूँ, कृष्ण के जितने कर्म हैं, जितने जन्म हैं, सब दिव्य है ना। लेकिन उनमें भी जो राधा रानी के साथ जो लीलाएं हैं कृष्ण की, उनकी कोई बराबरी नहीं है। तो एक बड़ी सुंदर लीला मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ये शायद आप लोगों ने सुनी हो या ना सुनी हो या कुछ थोड़ा बहुत जानते हो। ये घटना जो है उस समय की है जब भगवान कृष्ण द्वारका में है और 16108 उनकी पत्नियां हैं और राधा रानी कहाँ पर हैं, वृंदावन में। वृंदावन में कदली वन में राधा रानी कृष्ण के विरह का अनुभव कर रही हैं। राधा रानी की सेवा में बहुत ही सखियां हैं, उनमें से एक चंद्रांगना नाम की सखी है। तो उसके मुख से राधा रानी ने सुना क्या, सिद्धाश्रम की महिमा। सिद्धाश्रम जो है द्वारका में ही है, तो उसमें स्नान करने से कृष्ण के दर्शन होते हैं ऐसा जो है उसका महात्म्य है उस स्थान का, उस तीर्थ का। तो चंद्रानना ने जब राधा रानी को यह बात बताई कि सिद्धाश्रम में स्नान करने से कृष्ण के दर्शन का फल प्राप्त होता है, तो ये सुन करके श्री कृष्ण के योग के केवल राधा ने भी उसमें स्नान करने का विचार किया। तो इसके अनुसार उन्होंने चैत्र के सूर्य पर्व पर सिद्धाश्रम की यात्रा करने के लिए कदली वन से निकलकर वहां जाने का निश्चय किया। सिद्धाश्रम यात्राया सूर्य पर्व माधने राधा गंतुम मनस कटरे उठाए कदली वना। अब राधा रानी जब जाती हैं तो अकेले नहीं जाती हैं, उनके साथ कौन है? सौ यूथ गोपियां हैं, गोपियों के सौ यूथ हैं। आप जानते हैं यूथ का मतलब क्या होता है? अलग अलग ग्रुप गोपियों के हैं, जैसे मिथिलापुर वासिनी गोपियां उनका अलग ग्रुप है, कोसलपुर वासिनी गोपियां, अयोध्या वासिनी गोपियां, पुलिंद कन्या गोपियां, समुद्र कन्या गोपियां, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की गोपियां हैं जिन्होंने वृंदावन में जन्म लिया है। तो ये सौ यूथ हैं गोपियों के। जब राधा रानी निकली कदली वन से तो उनके साथ में गोपियों के सौ यूथ निकले और सब गोप निकले और राधा रानी के भी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं कृष्ण के विरह में, जो उनको श्री राम का साप प्राप्त हुआ तो उससे 100 वर्ष उनके जो है पूर्ण हो गए हैं। तो सती साथी राधिका पालकी में बैठकर आनंद देश के सिद्धाश्रम को गई। आनंद देश का मतलब द्वारका। रास्ते में उनके ऊपर बराबर चमर चल रहे थे, वहां ही यादवों से निमंडित भगवान कृष्ण भी यात्रा के लिए अपने 16,000 स्त्रियों के साथ आए थे। अब देखिए संयोग की बात क्या है, राधा रानी सिद्धाश्रम में स्नान करने आई और यहाँ भगवान कृष्ण आए अपने 16,000 स्त्रियों के साथ स्नान करने के लिए। गोपी नाम सतयो थे सर्व गोप है सतवर से लकी के तो श्री राम कारणाम श्री राधा सिद्धारूढ़ा छत्र चामर दीजिता आनंद महातीर्थम सिद्धाश्रम सती। करोड़ों बलिष्ठ गोप श्री राधा की आज्ञा से चारों ओर सिद्धाश्रम की रक्षा करने लगे। अब हुआ क्या कि राधा रानी पहले प्रवेश करती हैं सिद्धाश्रम में और कृष्ण के साथ जो यदुवंशी हैं वो बाद में आए। तब तक क्या हुआ, सिद्धाश्रम को घेर लिया, आप समझे, वो स्थान को घेर लिया। अब कृष्ण और उनके साथी वहां आ नहीं सकते, सब बलवान जो गोप लोग हैं उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। राधा रानी किसी बार कोई नहीं जा सकता वहां स्नान करने के लिए, हाथ में भेंट लेकर के जो गोपियां हैं सिद्धाश्रम में विधिवत स्नान करती हुई श्री राधिका की सेवा करने लगी। बलिष्ठा एक गोपाला कोटिता तत्र पाणि सिद्धाश्रम के गोपो सर्वतो राधिका जयान। अब स्नान के लिए आए हुए द्वारका वासियों पर क्या हो रहा है, गोपों और गोपियों की मार पड़ रही है। आप समझ रहे हैं, उनका ही क्षेत्र है द्वारका क्षेत्र उनका ही है और द्वारकावासी जो यादव हैं उनके ऊपर मार पड़ रही है। किनकी? गोप और गोपियों की, बैठ की मार पड़ रही है। उन्हीं के बीच भगवान श्री कृष्ण की स्त्रियां भी थी, उन स्त्रियों ने भगवान से पूछा। अब स्त्रियों को समझ नहीं आता, कृष्ण के पत्नियों को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो कृष्ण से पूछती हैं कि अद्भुत वैभवशालिनी ये कौन स्त्री स्नान कर रही है जिसके गौरव से सब यादव त्रस्त हो रहे हैं, कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा है इस स्थान पर। सतयु था तथा गोप वेद रहता महाबल सिद्धाश्रमे गिवन स्नान राधाम ने द्वारका वासिनाम के साम चिता नाम स्नान नाम भगवती यौरवा प्रसंती है सर्वे यादव पूर्णवान। अहो ये स्त्री किसकी पत्नी है? कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? कृष्ण की पत्नियां पूछ रही हैं कि स्त्री किसकी पत्नी है, इसका क्या नाम है और ये कहाँ रहती है। हे देव जी नंदन, आप सर्वज्ञ हैं, तो इसके विषय में बताइए। अहो कस्य प्रिया के का नाम है, कुत्र वासी, तुम सर्वज्ञो ही भगवान, बदनो देव की सुत। अब श्री कृष्ण भगवान बोले, क्या बोले? हे प्रिय, ये ब्रह्मानु गोपी पुत्री कीर्ति नंदिनी और मेरी प्रिया साक्षात राधा है, ये ब्रज मंडल की अधिश्वरी है और सब गोपियों में श्रेष्ठ है। ये पहली बार परिचय मिला। परिचय तो जानते हैं लेकिन दर्शन पहली बार कृष्ण की पत्नियों को मिला है। ब्रज भानु साक्षात राधे कीर्ति नंदिनी, ब्रजेश्वरी मंदिता गोपिका अधिश्वरी वरा। कृष्ण कह रहे हैं अपनी पत्नियों से, ये सिद्धाश्रम स्नान करने के लिए गोपियों के साथ व्रत से यहाँ आई हैं। इनकी गरिमा से मेरे यादव डरे हुए जैसे खड़े हैं। राधा रानी की महिमा से हमारे संत यादव डरे हुए खड़े हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है वहां जाने की। श्री राधा का ऐसा ही अद्भुत वैभव है। स्नातुम सिद्धाश्रम प्राप्त ब्रजा गोपी गणेश, यद गौरवान संकेते सत्या वैभव अद्भुतम। श्री कृष्ण की वचन, श्री कृष्ण के वचन सुनकर अपने सौतों में सर्वाधिक रूप यौवन से गर्विता सत्य भामा ने धीरे से कहा, अब सुनो ध्यान से। सत्य भामा विरोध कर रहे हैं। सत्य भामा ने धीरे से कहा, किससे कहा? अपने सौतों से कहा धीरे से, मतलब कृष्ण ना सुने और अपने सौतों से सत्य भामा कह रही हैं। तो आप जानते हैं मतलब किसके विरोध में बोल रही हैं? राधा रानी के विरोध में सत्य भामा बोल रही हैं। और क्या कहती हैं? क्या केवल राधा ही रूपवती है, मैं नहीं हूँ? सत्य भामा ने कहा, सत्य भामा आग लगा रही हैं। कृष्ण की बात तो सब पत्नियां मान रही हैं, सत्य भामा उनमें धीरे से आग लगा रही हैं। कह रही हैं क्या मैं नहीं हूँ? मेरे रूप और गुणों पर मुग्ध होकर बहुत से राजे मेरी याचना करने आए थे। हे सखियो, मेरे रूप के कारण ही सब धनवा मारा गया था और अक्रूर और कृतकर्मा को भी भागना पड़ा था द्वारका से। श्री कृष्ण से वचन सुनता सत्य धामा से धामी समेता है सपत्नी नाम रूप यौवन गर्विता किम राधा रूपवती नाहम रूपवती किम बहुग्रिया चिता पूर्वम रूपोदार्य गुणानीताम। अब सत्यधामा और अपनी विशेषता बदला रही है, क्या है कि जो चमंतक मणि है, जो चमंतक मणि है वो भी मेरे पिताजी ने कृष्ण को दिए। हाँ समझ रहे हैं, चमंतक मणि जो है मेरे पिता ने जो कृष्ण को दी है वो और किसी ने नहीं दी है। फिर मेरे सामने राधा रानी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? हाँ समझ रहे, वो चमंतक मणि क्या है? प्रत्यन आठ भार सोना प्रदान करती है जिसके कारण दुर्भिक्ष नहीं होती, महामारी नहीं होती, सर्प रोग की बाधा भी नहीं होती है, किसी की माया नहीं चलती। चमंतक मणि के सामने वो मेरे पिता ने दहेज में इनको दी है, तो फिर ये क्यों मेरे सामने राधा की चर्चा कर रहे हैं? आप सुन रहे दिने दिने स्वर्ण धारा अस्तो सासुजती स्वतः दुर्भिक्ष मार्य रिस्तान सर्वाधे यादयो स्वभा ततंती मायन सत्र यत्राते व्यर्थितो मही मद्विद्रा पारि बर्हेति दत्ता चाख्या चमंतका। इसी के कारण मेरे घर में सब वैभव, सब प्रकार का वैभव धन संपत्ति मेरे घर में है। तो मतलब क्या है कि मेरे सामने राधा की चर्चा क्यों हो रही है? सत्य भामा कह रही है
उसी के कारण मैं बड़े प्रेम से श्री कृष्ण के साथ गरुड़ पर चढ़कर चलती हूँ।
देखा सत्यभामा ने क्या कहा, इसका जवाब है कोई? सत्यभामा कहती है कि चमन तक मणि के कारण मैं कृष्ण के साथ गरुड़ पर चढ़ती हूँ। पता है सत्यभामा को लेकर के भगवान नरकासुर को मारने गए, नरकासुर को मार करके और फिर स्वर्ग में पारिजात लेने गए, फिर सत्यभामा के घर में पारिजात लगाया। तो सत्यभामा जो कह रही है वो ठीक तो कह रही है, क्या जवाब है आपके पास इसका? तेन जातम मंत्री सर्वमेव मद्भुतम प्रेमणा परेण श्री कृष्ण गरुड़ परिगामी।
और गरुड़ पर बैठ करके प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर का विकट युद्ध मैंने देखा है। मेरी ही कृपा से तुम सब यहाँ आई हो, सत्यभामा कह रहे हैं। मेरी कृपा से तुम सब कौन किनको कह रहे हैं? 16,100 रानियां जो भौमासुर को मार करके नरकासुर को मार करके किसने प्राप्त की थी, तो सत्यभामा कह रही हैं कि मेरी कृपा से ही तुम लोग आई हो। किसने मुझसे अनुमति ली थी तो तुम लोग फिर राठा रानी की चर्चा क्यों सुन रहे हो? सत्यभामा कह रहे हैं यहाँ आकर मेरी बराबरी करते हुए तुम भगवान कृष्ण की पत्नी बनी हो। मेरे ही गौरव से भगवान ने इंद्र को छत्र प्रदान किया है। प्राप्ता श्री कृष्ण पत्नी तुम सर्वा एक नतम से यहाँ मन गौरवा चक्राए छत्रम दत्तम मने कुंडले देव मात्र दत्ते वह मत प्रिय क्षया हे रावत भगवान आगा भौमा सुर समृद्धया। मेरे कल्याण के लिए इन्होंने इंद्र की माता अदिति को कुंडल वापस किए। अदिति के कुंडल किसने छीन लिए थे? नरकासुर ने। तो नरकासुर को मार करके मेरे कल्याण के लिए इन्होंने क्या किया है? अदिति को कुंडल वापस किए हैं। और ऐरावत कुल के हाथी और भौमासुर की सब समृद्धि महात्मा कृष्ण मेरी इच्छा से ही लाए हैं, द्वारका में लाए हैं। मेरे ही कारण श्री हरि ने इंद्र के साथ महान बैर किया था। सब देवता मिलकर के कृष्ण का युद्ध करते हैं मेरे कारण, सत्यभामा के लिए मेरे कारण। पता है क्यों? पारिजात के लिए इंद्र ने विरोध किया था तो सब देवता मिलकर के कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं, तो सत्यभामा के लिए मेरे ही कारण, मेरी प्रसन्नता से ही, मेरी प्रसन्नता के लिए कृष्ण पारिजात वृक्ष लाए और सब देवताओं को यह पराजित करके उन्होंने मुझे प्रसन्न किया। तो फिर क्या कारण है कि राधा रानी की चर्चा कर रहे हैं मेरे सामने? मेरे द्वार पर वृक्षराज कल्प वृक्ष सदा विद्यमान रहता है और मैंने अपने पाते व्रत से श्री कृष्ण को भस्म किया है। मैंने ये सब श्री कृष्ण का दान करके मैंने श्री कृष्ण को दान किया है। नारद जी को नारद जी को श्री कृष्ण दान कर दिए। तो मेरे समान ना किसी का वैभव है और ना किसी का गौरव है, तो फिर राधा रानी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? मेरे जैसा ना किसी का रूप है ना उदारता है, तब मेरे समक्ष राधा की चर्चा बेकार है। रोपोदार्य न कस्यास्तु राधाया किम वर्णनम यद रूपो परिचय दिया गया अनेन युधिष्ठिर। अब रुक्मिणी को भी उन्होंने आग लगाई सत्यभामा ने। कैसे? अब सुनो, रुक्मिणी तो बहुत जो है शांत रहती हैं, वो तो कभी विरोध नहीं करती, कभी मान नहीं करती, तो सत्यभामा मान कर दें। अभी रुक्मिणी को भी उन्होंने क्या है आग लगाई। क्या बोलती हैं? हे रुक्मिणी, क्या तुम रूपवती नहीं हो? राधा एक ग्वाले की पुत्री है और तुम सब राजकुमारी हो। तो फिर ये राधा की कहाँ तुलना है तुम लोगों के सामने? तुम धन्य हो, मान्य हो और मानवती स्त्रियों में श्रेष्ठ हो। हे शुभ्र रूपमणि सा तुम कतम रूप है बती नहीं, सा गोप कन्यता सच्यो यूयम वे राजे कन्यता धन्या मान्या सकर्मावे यूयम माने वसु सराम।
अब क्या हुआ, सत्य भावन ने आग लगा दी सबको, तो क्या हुआ सब में आग लग गई, अब सब भड़क गई, किसकी सब पत्नियां अपने कुल से अपने कौशल से रूप से यौवन से गर्वित होकर श्री कृष्ण की आत्मा पटरानियां अब भगवान से बोली और ये रुक्मणी आदि सब मान करके बैठ गई। अब आठों की आठों जो पटरानियां हैं वो कृष्ण से बोली, अब क्या बोली आप सुनिए ध्यान से।
बोले कौशल ऐसी लाख है रूप यौवन गर्वित श्री कृष्णम मानदम प्राहुर अष्टपट महाश्याम।
अब क्या बोले भगवान कृष्ण से कह रही हैं, भगवान पूर्व काल में हमने आपके मुख से राधा के रूप की बड़ी महिमा सुनी थी, आपने तो उनके रंग में रंगे रहते थे और वे आपके रंग में रंगी रहती थी, आपके प्रेम की ब्रज बाला को हम देखना चाहती हैं, आपके योग से जो सदा छिन्न रहती हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आई हुई हैं। तो कृष्ण की पत्नियां कह रही कि हमें राधा रानी का दर्शन कराओ, अभी वो स्नान करने आई हैं तो हमें आप मिलवाओ, राधा रानी से मिलवाओ।
सुदम तम मुखात पूर्व राधा रूपम परम स्मृतम जो श्याम रक्षा सदा तम वे स्वयं रक्षा सदा ताम राधा दृष्टि श्याम स्वयाम मृगवासी संद योगे न संखिन्ना इतना तुम चात्र समागतान।
अब सब रानियों से घिरे हुए श्री कृष्ण ने उनकी बात सुनकर तथास्तु कहा, कृष्ण को जैसा कहा जाए वैसे ही करना है कृष्ण को, तथास्तु कहा। 16,000 स्त्रियों के साथ राधा को देखने गए,
तथास्तु सुखा श्री कृष्ण पचित्री परिवेशी कहा थोड़ा स्त्री सहस्राग्यो दृष्टुम राधा जगाम।
अब देखिए ये घटना बड़ी दुर्लभ है कि कृष्ण की पत्नियां सब राधा रानी से मिलने गई हैं, शायद ये किसी ने सुनी हो ये घटना, सुनी किसी ने नहीं सुनी। हाँ तो अब राधा रानी का जो शिविर है वो कैसा है, स्वर्ण का शिविर है, ध्वजा पताकाओं से शोभित है, चंद्रमा के समान चंदोली उसमें तने हैं, मोतियों के पर्दे हैं, सफेद बिछौने बिछे हैं, चारों ओर तमीली के स्त्री की सुगंधी उड़ रही है, उस सुगंधि से आकृष्ट भौरे गुंजार कर रहे हैं और राधा का मन किसने हर लिया है, वो राधा विराजमान है वहाँ और सखियां समझ दुला रही हैं, उनके ऊपर छत्र लगा है, दासियां इधर उधर दौड़ रही हैं, राधा रानी के जो कुंदन है ये बाल सूर्य के समान चमकीले हैं, बाल सूर्य में तो लाल होता है, करोड़ों चंद्रमाओं के समान राधा रानी की कांति है और कोमल उनका शरीर है।
तेन त्रिंगावली चक्र कलम कोलाहलम परम पत्र राधा पटरागी श्री कृष्ण हृदय मानस हंता भैर्जनैर्जय वीजमाना सखी जन सत्र दूराधरे सत्र प्रगंधयंतामितात बालार्के कुंडलधरा विद्युजामे मनोहरा कोटिचंद्र प्रतिकाशा तनी कोमल विग्रह।
पैरों की अंगुलियों के अग्रभाग से वे फूलों की घूम पर धीरे धीरे टहल रही हैं, दूर नहीं राधिका को देखकर श्री कृष्ण के हजारों रानियां उनके रूप पर मोहित होकर बेहोश हो गई। देखा जब राजा रानी को नहीं देखा था तो बहुत उनको अभिमान था लेकिन क्या हुआ दूर से ही देखा राधा रानी को और क्या हुआ बेहोश हो गई दूर से ही देख करके राधा रानी को।
अंगुल्यग्रह शोभन पुष्य भूमि मनोहरा सने सने पाद पद्म धारयन्ति कोमलम दूरा साम राधिकां प्रेक्ष कृष्ण पत्न्या कृतां जगमुर्मूर्छां महाराजं तद्रूपेणा की मोहितां।
अब देखिए कैसा आश्चर्य है, राधा के तेज से श्री कृष्ण की रानियों की कांति वैसे ही मंद पड़ गई। अब देखिए कैसा इसमें बताया जा रहा है कि राधा रानी के सामने उनका जो सौंदर्य कैसा फीका पड़ गया, जैसे जैसे सुहरी के सामने सारे क्या होते हैं, ठीक है, सूर्य के सामने तारे फीके पड़ जाए। जब तक सूर्य नहीं होता है तारे बहुत चमकते हैं, और सूर्य के सामने तारे फीके पड़ जाए, राधा रानी के सामने कृष्ण की पत्नियां सब फीकी पड़ गई, उस समय सबका रूप अभिमान लुप्त हो गया और परस्पर अब कहने लगी। अब कृष्ण की पत्नियां क्या कहती हैं, परस्पर तब तेज हृदय पूरा तारा गणा यथा सदरूपाभिमानाता ऊजो सर्वा परस्परम अहो एतादृशं रूपं त्रिलोक्यां महिकाद्भुतं कृतं यथा तथा दृष्टं अद्वितीयं मनोहरम। अब क्या कहती हैं कृष्ण की पत्नियां, आगे पढ़ो आगे, कृष्ण की पत्नियां क्या कहती हैं, अहो ऐसा अद्भुत रूप सारी त्रिलोकी में नहीं देखा गया, हमने जैसा सुना था वैसा ही अब क्या देखा, जैसा सुना था वैसा ही अब देखा। ऐसा कहते हुए वे श्री कृष्ण के समक्ष आई, तब गोपियों और रानियों की आंखें आंखों से आंखें मिली। अहो वदन प्राप्ता श्री कृष्ण से पुरा करा गोपी नाम राजपुत्रियां नेत्राणी परिरे गिरे। अब सब गोपियां श्री कृष्ण को जब देखा अपनी पत्नियों के साथ आए हैं तो हर्षित होकर के जय जयकार करने लगी गोपियां, और राधा सहसा उठ खड़ी हुई, उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की परिक्रमा की। अब देखिए राधा का क्या सा चरित्र है, जैसे कृष्ण को देखा, कितने साल के बाद देखा कृष्ण को, 100 साल के बाद देखा है, श्री कृष्ण की परिक्रमा की और अपने कमल जैसे नेत्रों से आंसू बहाने लगी। श्री कृष्णम मां गतम वीक्षम पटरागे समन्वितम सदा जय जया राम चतुर्गोप्योति हरसिराम सहसा श्री हरि राधा परिक्रम्य कृतांजलि पद्मा भाभ्याम सुनेत्राभ्याम आनंदाश्रुणि मुंचति। सत्यभा जिस चमंतक मणि की बात कर रही है वो चमंतक मणि राधा रानी की जो सिंहासन है उसका उसका पैर बना है चमंतक मणि का। चमंतक मणि का जो है ना राधा रानी का जो सिंहासन है उसके पैर उसके पाए चमंतक मणि के बने हैं, उसके मध्य में पद्मराज मणि है, चंद्र मंजूर के समान उसकी गोलाई है, जिसकी किनारी कौस्तुभ मणि की है। राधा रानी के ऐश्वर्य देखो क्या है, बैकुंठ में केवल भगवान विष्णु के ही वक्ष में कौस्तुभ मणि रहती है और कहीं नहीं मिलती है, विष्णु की एकमात्र पहचान है कि कौस्तुभ मणि की विष्णु की पहचान होती है बैकुंठ में, लेकिन वो कौस्तुभ मणि क्या है राधा रानी के सिंहासन की किनारी बनी है, कौस्तुभ मणि से बनी है। सोचो राधा रानी के ऐश्वर्य देखो क्या, पारिजात के फूल बिछे हैं, अमृत का झरना बहाने वाला छत्र जिस पर लगा हुआ है वो सिंहासन है राधा रानी का। चमंतक खचित पादम चिंता मणि खचित लटम पद्मराजन लटम मध्यम चंद्र मंडल वर्तुलम कौसुभ है प्रकटित प्रथम कुंभ मंडल मंडितम पारिजातक पुष्पाढ़ वो सिंहासन राधा रानी ने भगवान को दिया और हंसते हुए मुख से राधा बोली आपकी आगमन से आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, सिद्धाश्रम का अद्भुत स्नान भी सफल हो गया। राधा रानी ने स्नान किया था सिद्धाश्रम में, किस लिए, कृष्ण के दर्शन के लिए, वो फल बिल्कुल प्राप्त हो गया, जैसे स्नान किया कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ।
भक्तों के सहायक आपकी मैंने भक्ति भी नहीं की।
देखो राधा रानी की दीनता कैसी दीनता। हम कहते हैं हम कितने बड़े भक्त हैं, राधा रानी क्या कहती है, क्या कहती है कि मैं आपकी भक्ति नहीं की बिल्कुल, राधा रानी कहती है। तो हम क्या कहते हैं, हमने कितनी भक्ति की, देखो हमारी भक्ति, हम कितने भक्त हैं। तो राधा रानी कहती है मैंने आपकी भक्ति बिल्कुल नहीं की, तथा तो मेरी सहायता के लिए आपने बहुत से असुर मार डाले। ये आपकी कृपा है कि आपने मेरे लिए कितने असुरों का वध किया है, जबकि मैंने आपकी बिल्कुल भक्ति नहीं की। देखो कितनी विनम्रता राधा रानी ने। सारी त्रिलोकी को जीतने वाला कंस भी आपसे भयभीत हो गया। अद्य में सफल हो धर्म हरे कोई गते सती धन्यम सिद्धा क्रम स्नान सफले भूतम सद्भुतम मया पिना कृता भक्ति तब भक्त सहायन भगवता सहाया मे स्वया दे रहे कृता भगी कंसो के लोग विजयी ये नदी तो प्रभु भगवान। हे देव आपने बलपूर्वक इंद्र का मान भंग किया और मेरे लिए व्रत की रक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो राधा रानी के लिए कितने पहाड़ उठाया। तो देखो राधा रानी की कितनी महिमा। तो कृष्ण की पत्नियां कहती हैं हमारे लिए कितने इतना किया इतना किया, लेकिन राधा रानी के लिए क्या किया कृष्ण ने, पहाड़ उठाया। आश्चर्य जब कोई बात होती है ना, जैसे कहा जाता है कि मैं तुम्हारे लिए पहाड़ उठा लूंगा, किसी को बहुत महत्व देना है तो कहा जाता है ना कि मैं तुम्हारे लिए पहाड़ भी उठा सकता हूँ। ये तो कहने की बात है कि कृष्ण साक्षात पहाड़ उठाया राधा रानी के लिए। तो राधा रानी की क्या महिमा है, तो कृष्ण की पत्नी कुछ भी नहीं है उनके सामने। रात के समय स्थान साथ आलिंगन करके गोपियों ने आपको अपने पक्ष में किया। आपका ये चरित्र नरलोक की विडम्बना कर रहा है। यथेष्टालिंग यदुराशि गोपी भिस्तम मती कृतम से चरितम देव नरलोक विडम्बनम। ऐसा कहते हुए राधा अब चंद्रानना गोपी की आज्ञा से श्री कृष्ण की पत्नियों से बड़े आदर पूर्वक मिली और उन्हें गौरव प्रदान किया। अब देखा राधा रानी का व्यवहार कैसा है। कृष्ण की पत्नियां जैसे निंदा करती हैं राधा रानी की, ऐसा नहीं राधा रानी है, वो क्या करती हैं, सम्मान करती हैं। रुक्मिणी जानवती सत्यभामा नागनजी भद्रा लक्ष्मणा कालिंदी मित्रविंदा इन सबसे राधा मिली। भैसनी जामवती भामा सत्याम भद्राम च लक्ष्मणा कालिंदी मित्रविंदाम चा मिलित्वा सा परस्परम। फिर 16,000 स्त्रियों से भी राधा रानी गले मिलकर मिली। अब राधा रानी क्या कहती हैं कृष्ण की पत्नियों से, क्या कहती हैं देखो, बड़ी ये प्रेम की बात है। कृष्ण की पत्नियों से राधा रानी क्या कहती हैं आप ध्यान से सुनिए। राधा ने कहा जैसे चंद्रमा एक है और चकोर बहुत से हैं, उसी प्रकार कृष्ण एक है और हम सब बहुत से हैं। तो राधा रानी कहती हैं कि हम सब बहने हैं, हम लोगों में परस्पर प्रेम होना चाहिए। चंद्रमा एक ही है और चकोर बहुत से होते हैं, उसी को हम सब बहने हैं, एक दूसरे की बहने हैं। सूर्य एक है और नेत्र बहुत से हैं, नेत्रों को जो प्रकाश प्राप्त होता है सूर्य का, तो एक ही सूर्य है और सब नेत्र बहुत से हैं। ऐसे एक कृष्ण है और हम सब बहुत से हैं। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण एक हैं किंतु हम उनकी भक्त, किंतु उनकी भक्त हम आप जैसी बहुत तेरी बहने हैं। चंद्रो यह है को बावस्कोरा सूर्यो एक है को बावोद्र सहस्र हो श्री कृष्ण चंद्रो भगवान तथा को भक्ता भगनी वयम जन। जैसे कमल का प्रभाव कौन जानता है, कमल का प्रभाव भ्रमर जानता है, कमल का प्रभाव भ्रमर जानता है और रत्न का प्रभाव कौन जानता है, रत्न का प्रभाव कौन जानता है, जोहरी। कमल का प्रभाव भ्रमर जानता है और रत्न का प्रभाव जोहरी जानता है, विद्या का प्रभाव
विद्वान जानता है और कविता का प्रभाव कवि जानता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रभाव को इस पृथ्वी पर कौन जानता है? कृष्ण का भक्त, कृष्ण का भक्त जानता है। पद्म प्रभाव मधुपो यथा रत्न प्रभाव तिलक परिचयी विद्या प्रभाव यथा ही विद्वान काव्य प्रभाव यथा कवींद्र यथा सहस्रे तो जने तो शत्रु रसय प्रभाव जानाति लब्धेन नरेन्द्र पुत्र्यः कृष्ण प्रभाव भवे कृष्ण भक्तान। अब राधा की बात सुनकर सब तोतों के साथ रुक्मिणी राधिका से बोली। रुक्मिणी का पहले से ही राधा के प्रति बहुत श्रद्धा थी। जब राधा की बात सुनी तो रुक्मिणी की श्रद्धा बहुत जागी। रुक्मिणी राधा रानी से बोली, राधा वाक्यम तदा श्रुत्वा रुक्मिणी भीष्मनंदिनी सपत्नी सहिता प्राह राधा कमले लोचना। अब रुक्मिणी ने कहा, देखो कैसे रुक्मिणी सम्मान करती राधा रानी का। हे ब्रजभानु कन्या के हे राधे, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारी भक्ति पर मुग्ध होकर भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो गए हैं। सारी त्रिलोकी जिनकी कथा कहा करती है वे श्री कृष्ण भगवान रात दिन तुम्हारी ही कथा कहते रहते हैं। धन्यासी राधे ब्रजभानु पुत्री त्वं भक्ति भावे ने वचन कृतोऽयम् मदत्यलम् यस्य कथां त्रिलोकी सहेदमार्थां मदतीतधीयाम्। श्री हरि के प्रति जैसे तुम्हारे भक्ति भाव का लक्षण सुना था वैसा ही हमने देखा है। जैसा सुना वैसा देखा। होता क्या है, सुनते ज्यादा है, जब देखते हैं तो फिर पता चलता है वैसा नहीं है, है? लेकिन राधा रानी के बारे में जैसा सुना वैसा ही देखा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब आप हमारे शिविर में चलिए जहाँ से हम बड़े आदर पूर्वक आपको लेने आए हैं। हम आपको वहाँ रखेंगे, अपने शिविर में रखेंगे। आप हमारे शिविर में करोगे। कौन कह रहा है? रुक्मिणी कह रही है। प्रथम यथा ते हरिभाव लक्षण तथा चित्रम नहीं चित्रमेव ही रक्षात्म शिविरान यत्र चित्वामि तुम रक्षात्मक यत्र ही स्वामी तुम अत्रागत मत्य आग्रता। ऐसा कहकर भीष्मक पिता रुक्मिणी कीर्ति पुत्री राधा को बड़े आदर के साथ अपने शिविर में ले आई। उस शिविर का नाम सर्वतोभद्र था। उसमें कमल की सुगंधी धमक रही थी। सुनहले पलंग पर तीर के फूल जैसी कोमल गद्दी और तकिया थी। वहां बैठा कर रुक्मिणी ने फूल माला चंदन वस्त्र और आभूषणों से भली भांति सत्कार करके राधा को वहीं रात्रि वास कराया। शिविरे सर्वतोभद्रे पद्म सिंजल के माथिते हमें श्री से मृदुले पर्यंके सोपे बरहरि सुखम निवासया मास वातात्रम मंदनादिभिः संपूज्य गुरुवंदनात्र सपत्नी सहिता सती। राधा के साथ जो गोपियों के सहयोग थे रुक्मिणी ने एक एक करके सबका सत्कार किया और उनसे बहुत तरह की बातें की। इसके बाद राधा को वहां सुलाकर अब देखो आप सुनिए श्री कितनी अद्भुत ये घटना है। रुक्मिणी ने राधा को वहां सुलाया और सब रुक्मिणी आदि पटरानियां अपने अपने शिविर को चले गई। जब रुक्मिणी श्री कृष्ण के पास गई तो देखा कि भगवान अभी जाग रहे हैं। तब रुक्मिणी ने कहा, अब रुक्मिणी को आश्चर्य हो रहा है कि कृष्ण तो जाग रहे हैं, इतना रात हो गई है, हे स्वामी अब तक आप होए क्यों नहीं? गोपी नाम सतयुधम का संपूजय जाति संग्रथन वाताला पांडव विधान कृत्वा कृष्ण प्रिया सदान स्वापय स्वा कथाम जगमु तम समय शिविरम मदान कृष्ण पात्र गदा भयसु दृष्टवा जाग्रत प्रसुतम कथम न शेषे भोल स्वामी यदि कृष्णम वाचा। अब भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अब सुनिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं। ये रुक्मिणी तुमने दैत्यश्री राधा का स्वागत वार्तालाप और आश्वासन से भरपूर सत्कार किया जिससे वे बहुत प्रसन्न हुई।
वे सोने से पहले नित्य दुग्ध पान करते हैं।
कौन कह रहा है?
किसने कह रहे रुक्मिणी से?
क्या
कि राधा रानी सोने के पहले दुग्ध पान करती है, किंतु आज उन्होंने दूध नहीं किया।
किसी से उनको नींद नहीं आई?
किसी कारण मेरे नेत्रों में नींद नहीं आई।
प्रद्युम्न सत्रपणे आशा तेन गजेश्वरी अर्चिता ही स्वया शुभ्रो प्रसन्न आशा भगवत्वर सात नित्यम युगवती है नादो पया शुभम पया पानम सुनागतम अद्य शुभ्रो तया किलन केन निद्रा नयनियो न जाता क्या महामते तस्मान ममा भी प्रस्ताव न जातो भी स्म कन्या के।
अब श्री कृष्ण के भजन सुनकर रुक्मिणी आदर के साथ दूध लेकर राधा के पास गई। जब तक राधा रानी दूध नहीं पीती है तो वो सोती नहीं है, तो रुक्मिणी जी आदर के साथ दूध लेकर के राधा के पास गई।
इति श्रुत्वा परम भैसु सपत्नी दे समन्विता निपादुभं तत्समीपं प्रयौ परमादराम।
सोने के कटोरे में मिस्त्री मिला करके गरम दूध लेकर रुक्मिणी ने बड़े प्रेम के साथ राधा को पिलाया।
उष्णम दुग्धम घृतायुक्तम सचोले है मने कृतम अपाये परम प्रीत्या राधा भीष्म जनमदिनी।
इस प्रकार भरी प्रकार सत्कार करके रुक्मिणी सत्यभामा आदि सौतों के साथ भगवान के पास लौटाई। यहाँ आकर अपना किया हुआ सारा कार्य सुनाकर ये उनके पैर दबाने लगी।
एवं अभ्यर्थ विधिवत दत्वा तांबूल लीपिताम सत्यधामा देवी सुसं सत्वं सपत्नी भी समन्विताम। आगत्य कृष्ण सामीप्यम वदन्ते स्वकृतं शुभाम भेजे श्री रुक्मिणी साक्षात श्री कृष्ण पद पंकजम।
अब रुक्मिणी क्या कर रही है? कृष्ण के चरण कमल दबा रही है। जब महारानी रुक्मिणी अपने कोमल हाथों से भगवान के चरण दबा रही थी तो सहसा उनके पैरों में छाले पड़े देकर बड़े विस्मय में पड़ गई।
संघावयंती सर्वम कोमल कर पंगम कृष्ण पाद कले छालम जिसा विस्मिता भवन।
ये बोली। अब रुक्मिणी बोली, हे प्रभु आपके पैरों में छाले क्यों पड़ गए? वे आज ही पड़े हैं ये सोचकर, बहुत सोचकर भी मैं इनका कारण नहीं जान सकी। आप तो चले फिर नहीं हैं और आज चाले खाले पड़े हैं।
वो तो कुछ
कृष्ण के पैर दबाती हैं रुक्मिणी जी, तो खाले आज ही पड़े हैं और आज आप चले फिर भी नहीं हो तो खाले क्यों पड़े हैं आपके पैरों में?
कुछ खाले का कथम जाता तद पादे तले प्रभो अजर भूता भगवन नवेर में यत्र ही कारणम।
हाँ, जबकि 16,000 ग्रामीण असुर नहीं थी तब राधा की भक्ति के प्रकाशन के लिए भगवान रुक्मिणी से बोले। अब देखो राधा की भक्ति भगवान प्रकट करने के लिए रुक्मिणी से क्या बोले।
थोड़ा सा स्त्री सहस्त्राण श्रवंती नाम हरे स्वयं राधा भक्ति प्रकाशम प्रसन्ना प्राय रुक्मिणी।
श्री भगवान ने कहा, हे धामिनी श्री राधिका के हृदयारविंद में मेरा पादारविंद नित्य विराजमान रहता है।
क्या समझे
कृष्ण क्या कह रहे हैं? कि राधा के हृदय कमल में मेरा चरण कमल हमेशा निवास करता है। राधिन के स्नेह बंधन में बंधे रहने के कारण एक या आधे क्षण के लिए भी मेरा चरण कमल राधा के हृदय से हटता नहीं। और आज राधा के बहुत गर्म दूध पीने से मेरे पांव में छाले पड़ गए हैं।
देखा क्या महिमा है
राधा सिंह राधा रानी ने जो गर्म दूध पिया है उससे मेरे पैर में छाले पड़ गए।
तुमने भी उन्हें मंद उष्ण दूध ना देकर बहुत गर्म दूध पिलाया है।
दूध पीना चाहिए क्या? मंद उष्ण मतलब हल्का गर्म होना चाहिए और तुमने ज्यादा गर्म दूध पिलाया है राधा रानी को।
श्री राधिकाया हृदय పాదారజన్నం విరాజతేనే అహర్ణ సంవత్సరం లవం లమాకం నాచలం చతీర అద్యోషోభ ప్రతిమానం సోంఘా వచ్చాలకాస్తే మమయోచనంతి మందోష్మదేవం హీన తస్మా విరుష్ణం తోపయ ప్రదత్తం. శ్రీకృష్ణ కే వచన సుందర రుక్మిణి ఆది సుందరియో నే ప్రేమ కే సాథ్ భగవాన్ కా చరణ్ ఛోడ్ దియా భగవాన్ కా చరణ్ ఛోడ్ దియా క్యో రుక్మిణి ఆది పత్నియో నే భగవాన్ కా చరణ్ ఛోడ్ దియా క్యో చరణ్ ఛోడ్ దియా హై ఖాళి పడే ఖాళి పడే చరణ్ ఛోడ్నే మే తో ఔర్ కష్ట్ హోగా భగవాన్ కో లేక్ ఛోడ్ దియా భగవాన్ కా చరణ్ ఛోడ్ దియా ఔర్ బడే ఆశ్చర్య మే పడ్ గయీ. శ్రీకృష్ణ శ్రీరాధా శ్రీరాధికా కా భగవాన్ మధుసూదన్ మే బడా ప్రీతి హై ఉన్కే సమాన్ అదితి ప్రీతి సారే సంసార్ కీ కిసీ భీ నారీ మే నహీ హై. శ్రీరాధాయా పరా ప్రీతి మాధవే మధుసూదనే కేసా అద్వితీయా. ఏ ఘటన మే సునాయి బీ అద్భుత ఘటన ఆపే కో పే జానతే ఘటనో ఏక దో తీన్ చార్ పాంచ ధన్యవాద. కో జనా సునే ఉన్నా రస హై కమీ నీ కోయి ప్రశ్న థోడా సమయ హారే పాస పాంచ మినిట్ 10 మినిట్ కి ప్రశ్న ఉత్తర యా మే ప్రశ్న కరూ ఆపకా ప్రశ్న సునా. తో యే కహ రహే హై కి జైసే రాధా రాణీ నే జైసే రాధా రాణీ కే కారణ భగవాన్ కృష్ణ గోవర్ధన్ పర్వత ఉఠాయా ఉసీ ప్రకార్ భగవాన్ రామ్ కే హనుమాన్ జీ నే పర్వత ఉఠాయా. తో వో తో స్వాభావిక హై హనుమాన్ జీ సేవక హై భగవాన్ రామ్ స్వాభావిక హై. ఆపకా ప్రశ్న కిస్మే కే శ్లోక హై భయస్మీ भैसनी मतलब रुक्मिणी फिर जामपति फिर भामा यानी सत्य भामा फिर सत्या फिर भद्रा फिर लक्ष्मणा फिर कालिंदी और मित्र बिंदा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ ये आठ नाम एक श्लोक में है. भैसनी जामपती भामा सत्याम भद्राम च लक्ष्मणाम कालिंदी మిత్రబిందాం చ మిలిత్వా సా పరస్పరం. ఇంకా ప్రశ్న కథ మే కాసే పడి ఈ గర్గ సంహిత గర్గ జీ నే కి రచన కీ హై గర్గ సంహిత జోకి కృష్ణ కే కుల్ గురు హై యాదవో కే కుల్ గురు హై. నారద జీ కే ఆజ్ఞా సే గర్గ జీ నే జో గర్గ సంహిత కీ రచన కీ హై శ్రీమద్ భాగవత్ కే హీ సమాన హై. నారద జీ నే ప్రేరణ ది వ్యాస జీ కో శ్రీమద్ భాగవత్ కీ రచన కరణే కే లియే ఉన్హీ నే హై గర్గ జీ కో ప్రేరణ ది గర్గ సంహిత కీ రచన కే లియే. లేకిన్ యే సంహిత యే సంహిత వో భాగవత్ పురాణ హై అజ్ఞాంతర భాగవత్ మే జో హై కృష్ణ కథా కే అలావా ఔర్ భీ మత్లబ్ ఉస్సే సంబంధిత విషయ హై జైసే సృష్టి హై నా సృష్టి ఉప సృష్టి है और मन मंत्र राजाओं के बंध ये सब कृष्ण कथा ये भी है. लेकिन जो गरीब संहिता है उसमें केवल कृष्ण कथा ही है दूसरे अवतारों की कथा नहीं है जिसे इसको संहिता कहा जाता है. इसमें 12,000 श्लोक हैं तो इसलिए कृष्ण कथा बहुत विस्तृत है. इसमें भागवत के 10वें स्कंध में केवल 4,000 श्लोक हैं तो 4,000 श्लोकों में ही कृष्ण कथा है कृष्ण चरित्र है. और ये जो ग्रंथ है इसमें 12,000 श्लोक है कृष्ण कथा के इसलिए बहुत विस्तृत है ये. और कोई प्रश्न किसी का? उनका प्रश्न है जब सत्य भामा के लिए भगवान कृष्ण पारिजात लेने गए थे स्वर्ग में तो इंद्र ने विरोध क्यों किया? हाँ विरोध करने का कोई कारण नहीं होता कि इंद्र कृष्ण का विरोध करे है? क्योंकि इंद्र देवताओं का राजा है और सबसे ज्यादा तो उसको पता होना चाहिए भगवान के जो चरित्र हैं सब देवताओं के राजा हैं इंद्र. और फिर
उसमें और भी कुछ और भी ऐसे कारण थे जिनसे इंद्र को विरोध नहीं करना चाहिए था। वो क्या था, इंद्र द्वारका में आए भौमासुर की शिकायत करने के लिए कि भौमासुर ने स्वर्ग में जो है आक्रमण करके और बहुत जो है उसने नुकसान किया और देवताओं को बहुत उसने कष्ट पहुंचाया, उसका वध करिए। तो भगवान कृष्ण जो है सत्यभामा को मना रहे थे, सत्यभामा रूठी थी क्योंकि तो नारद जी एक पारिजात का फूल लाए थे कृष्ण को दिया और कृष्ण रुक्मिणी को दे दिया, तो सत्यभामा रूठी थी कि तुमने रुक्मिणी को फूल क्यों दिया। तो इस कारण से जो है कृष्ण मना नहीं पा रहे थे सत्यभामा को। जब इंद्र आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपका काम करूंगा, लेकिन आप ऐसा करो जो मेरी प्रिया रूठी है उसको आप एक पारिजात का वृक्ष दे दो। तो इंद्र कहते हैं कि मुझे क्या दिक्कत है, आप जो चाहो वो पारिजात का वृक्ष ले लेना। तो ये भी कारण था कि इंद्र को विरोध नहीं करना चाहिए था। तो उसके कारण जो है कृष्ण सत्यभामा को लेकर के ही गए नरकासुर को मारने के लिए। तो वो पहले से निश्चित कर लिया था सत्यभामा को लेके जाने की जरूरत नहीं थी, आश्रम से ले जाने के लिए इन सत्यभामा को ले जा करके और नरकासुर को मार करके और फिर वहीं से स्वर्ग में जाकर के पारिजात लाना था सत्यभामा के लिए। तो सत्यभामा ने पहले ही कहा कि आप पहले पारिजात ले लीजिए क्योंकि इंद्र जो ना फिर बाद में वो गड़बड़ करेगा। तो इसमें कहते हैं कि मुझे चिंता नहीं इंद्र की, अगर इंद्र विरोध करेगा तो मैं जो है उसको ठीक कर दूंगा। फिर हुआ भी सत्यभामा को जो शक था वैसे ही हुआ। तो वास्तव में इंद्र ने विरोध नहीं किया था। जब उसमें गए जो बगीचा था स्वर का नंदनवन, तो सत्यभामा ने सुना तो वो पारिजात का वृक्ष सुना जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। तो वो पारिजात वृक्ष में सबसे अलग ही था और उसके जो रक्षक अलग ही थे। तो ये जो बात है वो पहले से कुछ पता नहीं चली या निश्चित नहीं हुई थी कि सत्यभामा उसी को सुनेंगे। जब उसको सुना तो कृष्ण ने उखाड़ लिया और जैसे उखाड़ा तो सती देवी के जो इंद्र की पत्नी सती देवी के जो सैनिक थे वो आए कृष्ण को मारने के लिए। वो कृष्ण से पढ़ के थोड़े थे ये मनुष्य जो ना यहाँ आकर के कैसे ये पारिजात का वृक्ष ले जा सकते हैं। तो कृष्ण को मनुष्य मान करके वो जो है ना आक्रमण करने लगे। तब सत्यभामा ने रोका, तब सत्यभामा ने रोका कि सती अगर जो ना अपने को बहुत श्रेष्ठ समझती है और अपने पति को बहुत श्रेष्ठ समझती है तो अपने पति से मेरे पति को बिखरा ले। तो इस तरह से फिर सती ने फिर सती को जो है सूचना मिली, सैनिकों ने सूचना दी कि सत्यभामा ने ऐसा कहा है। तो फिर उसने भड़काया इंद्र को, ये कृष्ण जो है ना तुम्हारा हमेशा जो है ना अहित करते हैं, तुम्हारी पूजा बंद कराई थी पहले भी और गोवर्धन की पूजा कराई थी याद है तुमको। और अभी भी जो है ना वो तुम्हारे विरुद्ध ही कार्य कर रहे हैं कृष्ण, और वो जो है ना वृक्ष लेके जा रहे हैं, अब तुम युद्ध करो। अब पत्नी के सामने जो है ना पति की ऐसी हालत होती है कि अगर कहेगा कृष्ण की महिमा कहेगा तो अपनी बेटी भी हो जाएगी। कृष्ण की महिमा जानता है तो हाँ हाँ करता है तो, लेकिन कुछ करता नहीं है। तो वो बार बार जो है सफल बच्चों से उकसाती है, चलो युद्ध करो, चलो युद्ध कर। तो ना चाहते कि इंद्र आगे युद्ध करने के लिए, सब देवता जो है फिर कृष्ण युद्ध करते हैं, फिर परास्त होते हैं और परास्त होना ही था। तो सती और गुस्से में इंद्र को डांटती है कि तुम्हें कोई पड़ोस नहीं है, मैं युद्ध करूंगी। तो फिर वो जो है ना युद्ध करने के लिए आई कृष्ण से, तो कृष्ण हंसे, अब इससे थोड़ी युद्ध करेंगे कृष्ण, तो सत्यभामा को अपना चक्र दे दिया, तो तुम युद्ध करो। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति आए और सती को समझाया कि पागल है, तू जानते नहीं कि कृष्ण कौन है, शंकर ब्रह्मा जी इनके महिमा को नहीं जानते हैं। तब सती जानते तो थी लेकिन स्त्री के स्वभाव के कारण जो है ना पागलपन कर रही थी। तो जब देवताओं के गुरु ने समझाया डांटा, तब सती अपनी निंदा करती हुई और कृष्ण से क्षमा याचना करके उससे जो है ना वापस चली गई। तो इस तरह से जो है जो स्त्री के वश में होता है कोई पुरुष, तो उसकी बड़ी जो ना दुविधा की हालत हो जाती है। तो इंद्र जानते हुए भी कहना स्त्री उदय करने के लिए आए, जानते थे कि क्या कर पाए स्त्री के सामने। तो धन्यवाद भागवतम की श्री चतन्य चरितामृत की जगत प्रभुपाद की श्री राधा पाठिता विशाखा की श्री गौरकाय भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। धन्यवाद।